नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रामायण से पहले पॉडकास्ट के 8वें एपिसोड में। अब तक हमने जाना कि किस प्रकार हुआ राक्षस साम्राज्य का प्रारंभ और कैसे सुमाली के पौत्र दशग्रीव ने अपने सौतेले भाई कुबेर को लंका के सिंहासन से हटाकर फिर से वहां राक्षसों का आधिपत्य स्थापित किया। लंका पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात लंका नरेश दशानन ने क्या किया, यह जानेंगे रामायण से पहले पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका सूत्रधार गौरव तिवारी और आप सुन रहे हैं रामायण से पहले पॉडकास्ट का 8वां एपिसोड, रावण का विवाह। लंका पर पहले दशग्रीव अर्थात रावण के बड़े भाई धनेश्वर कुबेर का राज्य था। उनके पलायन के पश्चात लंका का राज सिंहासन राक्षस वंश के हाथों में चला गया। अपनी राक्षस सेना, अनुगत प्रजा, पार्षद तथा अपने नाना सुमाली और उसके बड़े भाई माल्यवान के मार्गदर्शन में दशानन रावण लंका पर राज्य करने लगा। रावण के साथ साथ ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त उसके दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी अपनी बहन शूर्पणखा के साथ लंका साम्राज्य के इस नए राज परिवार के सदस्य तथा राक्षस समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधि बने। राज्याभिषेक के पश्चात रावण ने सबसे पहले अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालकेय वंशी दानव विद्युज्जिह्वा से करवा दिया। उसके बाद वह स्वयं तथा उसके भाइयों के विवाह हेतु कन्याओं का संधान करने में जुट गया। एक दिन वन में शिकार करते समय उसकी भेंट दानवों के शिल्पी मय से हुई। रावण ने उसे अपना परिचय देते हुए बड़े गर्व के साथ कहा कि पुलत्स्य नंदन विश्रवा जी का पुत्र है। मय के साथ उसकी परम सुंदरी कन्या भी वहां अपने पिता के साथ वन आई हुई थी। मय ने रावण से अपनी पुत्री का परिचय करवाते हुए कहा, स्वर्ग की अप्सरा हेमा तथा मेरे प्रणय से उत्पन्न मेरी इस कन्या का नाम मंदोदरी है। अप्सरा के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही मंदोदरी को उसका यह सुंदर रूप प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए किसी योग्य वर की खोज करते हुए इधर उधर घूम रहा हूं, लेकिन अब लगता है मेरी वह खोज आज पूरी हुई। ब्रह्मा जी के कुल में जन्मे आपसे बेहतर और कौन उसका पाणी ग्रहण करने योग्य होगा। ऐसा कहने के साथ ही मैंने मंदोदरी का हाथ लंकापति के हाथ में देते हुए उसे अपनी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। रावण तो पहले से ही मंदोदरी के सौंदर्य से मोहित हो चुका था, अतः उसने तुरंत मय के प्रस्ताव में हामी भरी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अपने विवाह के बाद रावण ने कुंभकर्ण का विवाह राजा बलि की नातिन वज्रज्वाला से और विभीषण का विवाह गंधर्व राज शैलुष की कन्या शर्मा के साथ करवा दिया। विवाह के बाद लंका नरेश को अपने ही समान एक मायावी और शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके जन्म के समय रोने की आवाज बादलों में गरज रहे मेघ के समान थी। यह देख रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखा। उसके बाद ब्रह्मा जी से मिले वरदान के चलते कुंभकर्ण को घोर निद्रा सताने लगी और उसने रावण से स्वयं के लिए एक भवन का निर्माण करने की बात कही। दशानन ने उसकी बातों का मान रखते हुए एक अत्यंत विशाल और ऐश्वर्य से संपन्न महल का निर्माण करवाया, जिसमें कुंभकर्ण अपनी कई हजार सालों तक चलने वाली अखंड निद्रा पूर्ण करने हेतु चला गया। कुंभकर्ण के सो जाने के बाद रावण तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने की अपनी मनसा की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगा। ब्रह्मा जी के लगभग अमृतत्व के समान वरदान को पाकर अहंकारी रावण दिन ब दिन और अधिक क्रूर होता चला गया। मनुष्य तो मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष, ऋषि मुनि एवं देवताओं को भी वह अपने पैरों की धूल समझने लगा। ऋषियों के रक्त से स्नान करना, नंदनवन में आक्रमण कर वहां की अप्सराओं को बलपूर्वक उठा ले जाना, दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर नरसंहार करना आदि लंकापति के लिए आम बातें हो गई थी। उसके इन्हीं बर्बरतापूर्ण आचरणों से ब्रह्मा जी के महान कुल का नाम मिट्टी में मिल रहा है, ऐसा विचार करते हुए एक दिन कुबेर जी ने अपने छोटे भाई को समझाने हेतु एक दूत भेजा। अब वह क्या संदेश लेकर आया और रावण ने उसके उत्तर में कुबेर जी को क्या कहा, जानेंगे रामायण से पहले पॉडकास्ट के आगे के एपिसोड में। सूत्रधार प्रस्तुत इस पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए और हर सप्ताह नए एपिसोड का आनंद लीजिए। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा कीजिए और सूत्रधार द्वारा प्रस्तुत अन्य पॉडकास्ट को भी सुनिए और फॉलो कीजिए। सूत्रधार से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमारा हैंडल है माई सूत्रधार, MYSUTRADHAR। अब मैं आपका सूत्रधार गौरव तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले सप्ताह और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।